पहले चाइनीज आर्मी को सबसे पहले फॉलो किया था फॉर द सेक ऑफ बिजनेस।
मिड 90s में चाइना ने डिसइन्वेस्ट कर लिया था मिलिट्री बिजनेस से। उन्होंने कहा था कि उन्हें ज्यादा प्रोफेशनल मिलिट्री चाहिए, उन्हें निकाल लिया था।
नलासिम गफूर साहब फरमाते हैं कि कभी अगर मुल्क की इकोनॉमी जो है वो अगर कोलैप्स हो गई तो हमारे पास हम सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए हमें, इसलिए आर्मी ने हर पाकिस्तान के बिजनेस के बीच में हिस्सा लिया।
बहुत सारे पैसे मुसलसल पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में, जो ये प्राइवेट सेक्टर ये चलाते हैं, उसमें कॉन्स्टेंटली जाते हैं और हमें ये भी नहीं मालूम कि ये कितने एफिशिएंट हैं, बल्कि इनकी एफिशिएंसी पे भी मैंने सवाल उठाया था।
उनकी आर्मी के इतने बिजनेसेस में हाथ नहीं है, उनके रिटायर्ड जनरल्स, आई डोंट थिंक सो किसी भी टाइकून ने उन जनरल्स को हायर किया और अपनी रिटायरमेंट के बाद वो मुख्तलिफ जगहों पर काम करते थे।
एज लेटेस्ट नाउ आपने फील किया कि ये पब्लिक के लिए नहीं लड़ रही।
मन जिन्होंने अपनी जिंदगी को पाकिस्तान के लिए मुख्तस कर दिया था, मुसलमा फातिमा जना, तब से लेके आज तक की जो कहानी है बड़ी अजीब और गरीब है।
1974 में हायर डिफेंस रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी पहली और शायद आखिरी दफा, और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बनी थी। उसका पहला सेक्रेटरी डिफेंस जो था वो प्राइवेट सेक्टर से इनफेक्ट लाया गया था। हमारे यहाँ एक सिविल मिलिट्री डिवाइड है।
इस वक्त की पीडीएम का हर पॉलिटिशियन जो मुझे नजर आ रहा है वो अकॉम्प्लिश करना चाहता है, जो कि पीछे कोई सुप्रीम पावर है जो उसको अकॉम्प्लिश करवाना चाह रही है,
क्योंकि हमारी कैपेसिटी ही डेवलप नहीं हुई इनको पीछे धक्का देने की। पॉलिटिकल सोशल पॉलिटिकल कैपेसिटी ही नहीं डेवलप हुई हमारी, तो इस वजह से अब क्या करेंगे।
प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदेद कहते हैं, हमारे पास मुजफ्फर आपके साथ, और हमेशा कोशिश ये होती है कि बेहतरीन से बेहतरीन अशखास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई जा सके। आज जो मेरे साथ खातून है, सबसे पहली बात आई ऑलवेज टुक द प्राइड के पाकिस्तान का बाज़ जगहों पे नेगेटिव इम्पैक्ट दिया जाता है, मगर हमारी खवातीन वेरी टैलेंटेड और हमारे मर्दों ने, हमारा बाप हो भाई हो बेटा हो, जिन्होंने हमें वो स्ट्रेंथ दी कि जो शाइनिंग गर्ल्स हैं उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया। आई हैव मोहतरमा डॉक्टर आयशा सदीका साहबा मेरे साथ हैं, एंड आई टेक द प्राइड शी इज द फर्स्ट सिविलियन वुमन जिन्होंने नेवल सर्विसेज में एज ए सिविलियन काम किया, एंड आई वाज लुकिंग एट के पाकिस्तान की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम किया बहसियत अकाउंटेंट एंड डिफेंस सर्विस ऑडिट में डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर भी आपने काम किया। इसके बाद आप निकल जाती हैं और आपने पीएचडी की डॉक्टरेट किया कि जो वॉर स्ट्रैटेजीज होती हैं, मेरा ख्याल है उसके ऊपर इन्होंने काम किया था, और नॉट वन कंट्री ही जो इनका थीसिस का हिस्सा था या जो इनका रिसर्च का पार्ट था उसमें छह ममालिक की इन्होंने आर्मी को का मुतालिया भी किया और कंपैरेटिव स्टडी भी की। डॉक्टर साहबा मैं आपको खुश आमदीद कहना चाहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम।
Said anything wrong? Do correct me, please.
जी जी जी, the correction is कि मैंने अपनी PhD की थी जी सर्विस के दौरान वॉर स्टडीज में, अपने शौक से गई थी, अपने पैसों से गई थी, छुट्टी लेके गई थी, वापस आके रिजॉइन द गवर्नमेंट, और उसके बाद जब लगा के देख लिया कि कोई सरकार को समझ नहीं आता मेरे साथ क्या करें, मुझे नहीं आता कि सरकार के साथ क्या करूं, तो फिर जरा रिजाइन इन 2001। मेरी पहली किताब जो थी वो आर्म्स प्रोक्योरमेंट डिसीजन मेकिंग पे थी, विच केम आउट ऑफ माई PhD। सो छह मुल्कों का कंपैरिजन नहीं था, वो बेसिकली आई लुक्ड एट पाकिस्तान की जो नेचुरली उसमें सारी दुनिया की डिसीजन मेकिंग देखनी पड़ती है, लेकिन वो मेरी पहली किताब थी, पाकिस्तान आर्म्स प्रोक्योरमेंट एंड मिलिट्री बिल्डअप 79 to 99। दूसरी किताब फिर जो है 5-6 साल बाद मैंने जो छपी थी वो मिलिट्री इंक थी, मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। जब आपने कंपैरेटिव किया था इसकी, आपकी जो फर्स्ट बुक थी उसमें आपने किन कंट्रीज की आर्मीज को स्टडी किया था?
देखिए मिलिट्री इंक के लिए आई लुक्ड एट जो मिलिट्री बिजनेस है एज अ इंडिपेंडेंट जॉनरा ऑफ मिलिट्री कैपिटल। नॉर्मली समझा जाता है कि मिलिट्री जो डिफेंस बजट्स हैं दुनिया में, मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, वो एक फॉर्म ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग होती है। मिलिट्री बिजनेस जो है उसके मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, और मैंने ساری دنیا کے دیکھے تھے, یعنی کہ میں نے وہاں سے لے کے امریکہ سے لے کے فرانس, جرمنی, یو کے, پھر آپ کے جو ہے ان چائنا اور تمام ممالک کو دیکھا تھا کہ کس میں کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ملٹری بزنس کس قسم کا ہوتا ہے, وہ کس قسم کے اسٹیٹ اسٹرکچر جو ہے اس کو فارم کرتا ہے, پرٹیکولر بزنس ماڈل جو ہے.
صحیح, ایک کہاوت ہے, کبا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. پاکستان نے مختلف جگہوں پہ آ کے ڈفرنٹ کنٹریز کے ماڈل کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا, بٹ انفارچونیٹلی نہ ہم 3 میں رہے نہ 13 میں رہے. ظاہر ہے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ چائنا ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے, ہمارا بیسٹ الائی ہے. پاکستان کی آرمی نے میرا خیال ہے چائنیز آرمی کو سب سے پہلے فالو کیا تھا فار دا سیک آف بزنس. وڈ یو مائنڈ ٹو ایلیبوریٹ؟
میرا خیال میں جی یہ کہا چلا ہنس کی چال والی یا مثال نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے ٹرکی کر رہا تھا اور چائنا, انڈونیشیا, یہ تمام ممالک تھے جن کے پاس ریسورسز کم تھے اور فوجیں ان کی بہت بڑی تھیں اور اس کے لیے ان کی فوجیں جو تھیں وہ انوالو تھیں. یہ بھی ہم غور طلب ہے کہ مڈ نائنٹیز میں چائنا نے ڈس انویسٹ کر لیا تھا ملٹری بزنس سے. انہوں نے کہا تھا کہ انہیں زیادہ پروفیشنل ملٹری چاہیے, انہوں نے نکال لیا تھا. سو بیسکلی فوج واز اے پاکستان اس وقت ایک بیوروکریٹک پولیٹیکل سسٹم تھا اس کا, اور اس میں فوج نے سوچا, انیشلی سوچا کہ جی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کریں گے, اور دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ اٹانومی, مطلب کہ فائنینشیل اٹانومی ہونی چاہیے, ہمارے پاس چیزوں کا کنٹرول ہونا چاہیے. تو وہاں سے بات شروع ہوئی اور پھر بڑھتی چلی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیوروکریسیز, فوجیں, انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے کو فالو کرتی ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا جس میں اکاؤنٹیبلٹی فوج کی شروع دن سے ہی ہمارے ہاں بہت کم تھی.
بالکل آپ نے صحیح کہا. کل آرٹیکل تھا بی بی سی کے اوپر, ایسا کمال کا آرٹیکل تھا کہ دیکھنے والا تھا. جنرل آصف غفور صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی اگر ملک کی اکانومی جو ہے وہ اگر کولیپس ہو گئی تو ہمارے پاس ہم سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے ہمیں. اس لیے آرمی نے ہر پاکستان کے بزنس کے بیچ میں حصہ لیا, بلکہ آئی وڈ رادر سے کہ پاکستان کی ریلوے واز, عام آدمی استعمال کرتا ہے, شوڈ بی ان اے پروفٹ, مگر این ایل سی نے ریلوے کا بھی بھٹا گول کر دیا, وچ از آرمی ڈپارٹمنٹ. تو کیا محسوس کرتی ہیں کہ ایک آرمی جو ایک ملک کے دفاع کے لیے ہے, کیسے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہماری اکانومی کولیپس ہو گئی تو پھر تو ملک میں عام عوام کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا؟ اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کرنا چاہیں گی؟
دیکھیں جی, ان کا خیال ہے نا, ان کے خیال ہے, وہ جو کچھ بھی کریں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میری ایک جو میرا کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے پیسے مسلسل پبلک سیکٹر سے پرائیویٹ سیکٹر میں, جو یہ پرائیویٹ سیکٹر یہ چلاتے ہیں, اس میں کانسٹنٹلی جاتے ہیں, اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کتنے ایفیشنٹ ہیں. بلکہ ان کی ایفیشنسی پہ بھی میں نے سوال اٹھایا تھا کہ اگر اسٹیٹ سپورٹ نہ ہو تو ایفیشنٹ بھی نہ ہو. تو اگر اکانومی کلیپس کر جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسے کلیپس نہیں کریں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس یہ وہ ادھر سے وہ ریسورسز جو ہیں وہ ہوں گے ان کے پاس, کہ وہ سارا جو 6-7 لاکھ فوج کا جو بندوبست ہے وہ اسے چلا سکیں؟ جواب ہے نہیں. سو یہ صرف بتانے والی باتیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اکنامک پلاننگ میں بھی یہ بالکل پیدل ہیں, ان کو پتا نہیں ہے کہ اکانومی چلتی کیسے ہے. اسی اس قسم کی فروہی باتیں کرتے ہیں کہ جی اگر اکانومی کلیپس کر جائے گی تو ہم اس سے چلائیں گے, جبکہ بہت ہی کوئی خوابوں والی باتیں.
اکثر اوقات کمپیریزن ایک کیا جاتا ہے کہ جی انڈیا کے لیے بہت زیادہ بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، اور آپ نے شاید انڈیا کو بھی اسٹڈی کیا ہو، ان کی آرمی کے اتنے بزنسز میں ہاتھ نہیں ہیں، ان کے ریٹائرڈ جنرلز آئی ڈونٹ تھنک سو کسی بھی ٹائکون نے ان جنرلز کو ہائر کیا اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہوتے، جسٹ لیو آرڈنری لائف، ویئر ایز پاکستان کی افواج لوگوں کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے بجٹ ایلوکیشن میں ہمیں پیسہ اگر آپ انڈیا سے کمپیئر کریں تو نہ ملنے کے برابر ملتا ہے. یہاں پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ کیونکہ ہم کہتے تو ہیں کہ پاکستان کی فوج عوام کی فوج ہے، مگر آئی تھنک سو یہ عوام کو ڈس اون کرتے ہیں، اب میں نے یہ فیل کیا.
اچھا جی، آپ نے ایز لیٹ ایز ناؤ آپ نے فیل کیا کہ یہ پبلک کے لیے نہیں لڑ رہی. دیکھیں، انسٹیٹیوشنز جب ان اکاؤنٹیبل رہے نا تو پھر وہ ایسی ہو جاتی ہیں، وہ پھر عوام کے لیے جس پرپز کے لیے بنائی جاتی ہیں اس کے لیے نہیں رہتی. اور کوئی بھی فوج، کسی بھی ملک کی فوج جو ہوتی ہے، وہ دفاع کو کہا جاتا ہے اٹس اے پبلک گڈ. یعنی کہ آپ ایک چوکی دار رکھیں، میں رکھوں، ہمارے ہمسائے دوست رکھیں، اس کے بجائے آپ کٹھے مل کے اپنے ریسورسز کمپائل کر کے، جو کہ جسے ڈیفینس بجٹ کہتے ہیں، آپ ایک کامن سیکیورٹی کے لیے ایک انسٹیٹیوشن بناتے ہیں. لیکن اگر یہ انسٹیٹیوشن اکاؤنٹیبل ہی نہ رہے تو پھر، اور یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ جن لوگوں کے لیے کر رہا ہے کام، تو پھر تو یو نو یہ عوام کے لیے نہ لڑ رہا ہوا نا، اس کا پھر یہ پھر اپنے انٹرسٹ کے لیے تو کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہوں گے. دیکھیں، ہندوستان کے ساتھ آپ مقابلہ ایک تو نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیپیسٹی وائز کیا یہ فوج ہندوستان سے لڑ سکتی ہے؟ اگر کوئی حملہ ہو، بالکل لڑ سکتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا ہندوستان کا کمپٹیشن انہیں کرنا چاہیے؟ جواب ہے نہیں. ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، اس کا ایک طرف ہم ہے، دوسری طرف چائنا ہے، تیسرا ان کا گریٹ پاور یا ریجنل پاور کی ان کی ایمبیشنز ہیں. ہم نے تو کسی دن بھی یہ نہیں کہا کہ ہماری ریجنل پاور کی ایمبیشن ہے. سو ان کا ایک تو بجٹ جو ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کمپیریٹو ٹرمز میں دیکھیں اس پرسینٹیج آف جی ڈی پی، تو ان کا بھی بجٹ کم ہے، لیکن ہم سے مقابلے میں ہمیشہ وہ زیادہ ہی لگے گا، کیونکہ ہماری تو جی ڈی پی بھی تھوڑی ہے. سو یہ کمپیریزن یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا پاکستان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے ان کیس آف اے کانفلکٹ؟ یس. لیکن اگر جنگیں شروع کرے گا اور پھر چاہے گا کہ اپنے اس پہ ختم ہو، تو پھر جواب ہے نہیں. سو یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے.
ویری سیڈ. مگر ڈاکٹر صاحبہ، میں آج جو میرا ایک اور کنسرن بھی ہے، میں بالکل آرمی کو مورد الزام ٹھہراتی ہوں، اور جب یعنی عموماً جنہوں نے اپنی زندگی کو پاکستان کے لیے مختص کر دیا تھا، محترمہ فاطمہ جناح، تب سے لے کے آج تک کی جو کہانی ہے بڑی عجیب و غریب ہے. پاکستان کی آرمی وقت کے ساتھ ساتھ، میں نے کل کا پہلے بھی ذکر کیا، کل بی بی سی نے کمال کا آرٹیکل لکھا ہے، مگر آج اگر میں دیکھتی ہوں اور میں پیچھے کی طرف نظر ڈالتی ہوں، تو مجھے میرا پولیٹیشین بڑا کرپٹ نظر آتا ہے. یعنی پولیٹیشینز نے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر کام کیا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ہمارا ڈیفنس کا ادارہ جو تھا، وہ آرمی کو دیکھتا تھا کہیں نہ کہیں، جو منسٹری آف ڈیفنس تھی، مگر نواز شریف صاحب نے آ کے کمپرومائز کیا، وہ معاملہ ختم کر دیا. جناب اس سے پہلے کی حکومتوں نے بھی ڈیفینیٹلی کیا ہوگا. ایوب بھٹو صاحب نے بھی، مجھے یاد ہے کہ ایوب خان کو بٹھایا تھا اندر لا کے، مگر اس کے بعد عمران خان صاحب نے باجوا، آج ان کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں ان سے کچھ غلطیاں ہوئی جن کو وہ نہیں دہرائیں گے، آئی ایم افریڈ. پھر اس کے بعد اب جو پی ڈی ایم بنی ہے، ایوری پولیٹیشین از سولڈ. آج ہی کی نیوز ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے وہ جو آئین کا کھلواڑ ہوا ہے 26 امینڈمنٹ کے لحاظ سے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر تو کوئی اور اس کو کرے، پارلیمان اگر اس کو ڈیزالو کرتی ہے یا ختم کرتی ہے 26 امینڈمنٹ کو، تو وی ول ایکسپٹ. अदरवाइज कोई भी नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि हमारा पॉलिटिशियन थ्रू आउट कॉम्प्रोमाइज उसने किया, थ्रू आउट फॉर द सेक ऑफ पोजीशन, जिसमें वो जिसके मुंह को खून लगा हुआ था उसके मुंह को खून और ज्यादा लग गया। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिए।
मेरे ख्याल में जी आप बहुत तीन चार चीजें आप बहुत इकट्ठी कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हिस्ट्री भी आप थोड़ी सी प्लीज अपनी ठीक कर लें। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो थी वो बनी ही आके थी एक्चुअल जो थी जो आज हमारे पास मौजूद है भुट्टो साहब ने बनाई थी 1974 में। हायर डिफेंस रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी पहली और शायद आखिरी दफा और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बनी थी। उसका पहला सेक्रेटरी डिफेंस जो था वो प्राइवेट सेक्टर से इनफेक्ट लाया गया था और उसके बाद सिविल ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो सेक्रेटरी डिफेंस लगा करते थे, सेक्रेटरी डिफेंस एंड डिफेंस प्रोडक्शन। उसमें तब्दीली जो पहली लाए थे वो जनरल मुशर्रफ लाए थे, उन्होंने रिटायर्ड जर्नलों को बिठाना शुरू किया और उसके बाद जो हुकूमतें थी उन्होंने उसको चेंज कर नहीं पाए क्योंकि इनका असूल ये कि जिस इलाके पे जिस सब्जेक्ट पे जिस जगह पे ये कब्जा करते हैं उससे छुड़वाना बड़ा मुश्किल होता है। आपकी जो दूसरी बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि और उसमें ये गलतियां करते चले गए। मेरे ख्याल में एक जो फंडामेंटल चीज है वो ये है कि हमारे यहाँ एक सिविल मिलिट्री डिवाइड है। सिविलियन जो है वो मिलिट्री के इदारे को समझते नहीं है और मिलिट्री सिविलियन को नहीं समझते क्योंकि हर कोई अपनी नजर से दूसरे को देखता है और इसलिए हमारे यहाँ निगोसिएशन का सिलसिला नहीं चलता। पॉलिटिशियंस जो हैं वो मिसजज करते हैं कि अब आप ये देखिए ना कि और जहां पॉलिटिशियंस ने किया भी होता है उसके बाद अपने किए पे पानी फेर देते हैं। मसलन ये बहुत बताना जरूरी है कि 2013 में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का सिस्टम है जो कि रिवर्सल थी कैबिनेट कमेटी ऑफ डिफेंस के सिस्टम से, वो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ। लेकिन मजे की बात यह है कि 1991-92 में जब उनकी पहली हुकूमत आई थी तो उसने पहली दफा मिलिट्री बिजनेस पे टैक्सेस लगाए थे और वो टैक्सेस की छूट जो थी वो हुकूमत जाने से पहले 2021 में या अर्ली 2022 में इमरान खान गवर्नमेंट ने दी थी। सो होता ये है कि हर पॉलिटिशियन जो है वो समझता है कि इनको थोड़ी सी इधर यू नो स्वीटनर्स इनको दे के इनको अच्छा टॉफियां दे दो ये खुश हो जाएंगे ये कोऑपरेट करेंगे ये वो। हाल में इंस्टीट्यूशन को समझने की बहुत जरूरत है। पॉलिटिशियंस इनहेरेंटली क्यों करते हैं ये, एक तो शॉर्ट टर्म जबकि आपको जब पता है कि अभी शायद जिंदगी खत्म हो जाए हुकूमत की तो यू ओनली स्टार्ट प्लानिंग शॉर्ट टर्म। दूसरा ये है जी कि 1950 से कभी पॉलिटिशियंस के पैर जमने नहीं दिए गए और सिर्फ पॉलिटिशियंस ही खराब नहीं है, आपकी प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी वैसा ही है। मतलब कि जो नेचर ऑफ द स्टेट है उसमें बिल्कुल ये है कि हर कोई शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ देखता है। हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म जो है वो पॉलिसीज को कोई देखता नहीं है। सिविल सोसाइटी आप देखें ना, पंजाब खड़ा भी नहीं होता कोई लंबी मुतहरिक उसके लिए मूवमेंट के लिए। सो एक एग्जॉस्टन है, टेम्प्री डिसीजंस किए जाते हैं और बिल्कुल उस हद तक पॉलिटिशियंस का कसूर है और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हर बड़े पॉलिटिकल ईरा जो है उसको कायम करने में मिलिट्री का अपना हाथ है। सो एक को हटाते हैं दूसरे को लेके आते हैं फिर फाइनली एक तीसरा अल्टरनेटिव लेके आए जिसको उसको भी निकालने के चक्कर में है। सो हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसकी तारीख आप उसको And yes, हमारे यहाँ डेमोक्रेसीज इन द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम भी उसके भी मसाइल हैं. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं जो कि कहे कि हम डेमोक्रेसी का पास रखते हैं, हमारी पार्टी जो है वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है या हम सपोर्ट करेंगे लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को. आप तो कनाडा में बैठी हैं, आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम मजबूत होना कितना जरूरी होता है. लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई है नहीं और उसकी वजह से ये जिसे कहते हैं ना चारों शाने चित हो जाते हैं या जब मुकाबले होते हैं, कभी भी मुकाबले होते हैं, जैसे अब मुकाबला हो रहा है, लोग हैं रिजिस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि सिस्टम बदले, चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक अच्छा बेहतर पॉलिटिकल प्रोसेस आए. लेकिन उसके लिए जो हार्ड वर्क करना है ना सिर्फ के मिलिट्री को अकाउंटेबल करने के लिए बल्कि अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, अपने सारे मिजाज को बदलने के लिए, तो वो कैपेसिटी जो है वो हमारे यहाँ लगती नहीं है.
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपने. इस वक्त आपने इमरान खान साहब के तक के दौर का जिक्र किया. इस वक्त की जो पीडीएम है इसमें, आई माइट बी रॉन्ग, इसीलिए तो आपकी मौजूदगी है कि जहां जहां हमारा कॉन्सेप्ट गलत है एटलीस्ट थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हमें मिले जरूर. पीडीएम जो इस वक्त की है और ये मखलूत हुकूमत एक हाइब्रिड फॉर्म इन्होंने बनाई, मगर जो डिलीवरीज नजर आ रही हैं वो लगता है कि बिहाइंड द सीन देयर इज सम फोर्स जो इनको इस्तेमाल करते हुए प्लान कर रही है. इट्स ओनली के यू हैव द नॉलेज, आपने ब्यूरोक्रेसी लेवल पे भी काम किया एज ए ब्यूरोक्रेट, सीएसएस का एग्जाम भी आपने दिया, आपने डिफरेंट चीजों को का बड़ी करीब से मुताला किया. दैट इज रीजन आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड. इस वक्त की पीडीएम का हर पॉलिटिशियन जो मुझे नजर आ रहा है वो अकॉम्प्लिश करना चाहता है, जो कि पीछे कोई सुप्रीम पावर है जो उसको अकॉम्प्लिश करवाना चाह रही है. इसके लिहाज से भी अगर
कहीं 2018 से यही हो रहा है ना, पीडीएम वाले ये कर रहे हैं. 2018 में इमरान खान साहब क्या कर रहे थे? 2018 में जब आप जनरल बाजवा को कहते हैं, इजाजत देते हैं उनको ला के इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बना देते हैं, इन्होंने आके पीडीएम ने आके मजीद उस पर किया चार चांद लगाए. एसआईएफसी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो कि वर्जन 2 है उसका जो कि था. तो देखें आप एक मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को उसके उसके हेड को, उसके इदारे के हेड को आप उठा के जिसने आपको सर्व करना है, जो फौज होती है, देखिये वो जिसे वो आपने भी सुना होगा, लोग मुंह खोल के हमेशा कह देते हैं बड़ा सा के क्लाउजविट्स ने, जर्मन स्ट्रेटेजिस्ट थे कार्ल वॉन क्लाउजविट्स, वो कहते थे कि वॉर इज पॉलिटिक्स बाय अनदर मींस. इसका एक एस्पेक्ट ये है कि वॉर इज वेरी मच पॉलिटिकल, मिलिट्री इटसेल्फ इज अ पॉलिटिकल टूल जो के पॉलिटिशियन आपका इस्तेमाल करेगा, जो के पॉलिसी मेकर आपका इस्तेमाल करेगा, राइट? तो उसके लिए आपने उसकी उसको जो अकाउंटेबल बनाना है, उसको जिस रस्ते पे लगाना है, आप उसको अपने साथ थोड़ी बिठाएंगे. वो तो आपकी वो आपके ऑर्डर्स वो इसलिए बनाया गया है, वो इंस्टीट्यूशन इसलिए कि जब आप चाहेंगे, जब आप कहेंगे, समझेंगे कि आपकी पॉलिसी एक ऐसे नहज पे है कि व्हेन यू हैव टू एंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट, तो वो आपके बिहाफ पे कॉन्फ्लिक्ट करेगा, खुद मुंह उठा के नहीं जाएगा, आपके बिहाफ पे करेगा. और पॉलिसी मेकर पॉलिटिशियन जो है वो डिसीजन किसके बिहाफ पे लेगा, जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिन्होंने उसको वोट दिए हैं. दिस इज द साइकिल दैट इज देयर. सो उनको आप अपने बराबर बिठा दें, उनको आप इजाजत दें. अब इमरान खान साहब ने भी दी थी कि जी बाजवा साहब जनाब जाके बिजनेसमैन जो हैं उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, और इनकी स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर रही, प्राइम मिनिस्टर साहब तब जो थे इमरान खान, उनकी स्टेटमेंट्स हैं. उन्होंने कहा था हाँ जी जाएं करें, मीडिया से वो बात करते थे, अब भी वही हो रहा है. सो देखें ये कोई और ये सिर्फ पीडीएम या इमरान खान की गवर्नमेंट्स का मसला नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है जो कि 1954 से ऐसे चलती आ रही है। और हर दफा क्योंकि हमारी कैपेसिटी ही डेवलप नहीं हुई इनको पीछे धक्का देने की, पॉलिटिकल सोशल पॉलिटिकल कैपेसिटी ही नहीं डेवलप हुई हमारी, तो इस वजह से अब क्या करेंगे। उस वजह से यही होता है कि आप ये ताकतवर रहते हैं और इनकी एबिलिटी जो है, सो मैं ये नहीं कहूंगी कि जनाब ने यही इसी पीडीएम का ही बिहेवियर है कि ये पीछे से कोई स्ट्रांग हाथ है जो इनको मैनूवर कर रहा है, या इमरान खान ने ही किया, आदत है इनकी, यही क्रिएट करते हैं तो यही करेंगे ना। उसके बदले में जो जो कैपेसिटी डेवलपमेंट होनी है वो तो हुई नहीं।
वेरी सैड डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि क्या कोई आगे, जब हम होपफुल एंड आई एम वेरी होपफुल इंशाल्लाह थिंग्स विल गो फाइन, आपने भी मुझे बिगनिंग में बड़ी होप दी है, डू यू थिंक कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आ सकती है ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। बाय द वे बिफोर आई गो दिस, डोनाल्ड ट्रंप जब आए हैं और मैं लाउडली आजकल इस बारे में बात कर रही हूं, उन्होंने अपने बेटे बैरन का जब जिक्र किया एंड डोनाल्ड ट्रंप अपनी एज और उसी ग्रुप में चल रहे थे, उसने कहा जनरेशन जी को इन्वॉल्व करो, विच ही डिड और उसको उन्होंने एक्नॉलेज भी किया अपनी इनॉग्रेशन पे, एंड आई मेंशन इट इवन यस्टरडे एज वेल कि पाकिस्तान इज फॉर्चुनेट इनफ कि आज से 4 साल पहले तक जो यूथ थी वो अब बहुत एक्टिव हो गई। डू यू थिंक कि कोई ऐसी गवर्नमेंट या कोई ऐसा पॉलिटिशियन आ सकता है, हालांकि मोस्टली मुझे जागीरदार वडेरे और पैसे वाले ही नजर आते हैं, बट ऐसा नजर आ सकता है जो इनको, वो जो अब पीछे रह के फैसला इनसे करवाते हैं और हर चीज में मदाखलत कर रहे हैं, इनको कन्फाइंड कर सके टूवर्ड्स देयर ड्यूटीज और फोकस करवा सके जो उनका काम है उसको।
देखिये, पहली बात तो ये है कि अगर हम जोर जबरदस्ती कोई चाहते हैं कि कोई कहे हाँ जी हाँ बड़े बड़ी रोजी हालात हमारे होने वाले हैं, तो देखिये मैं समझती हूँ कि जो 2-3 चीजें अच्छी नजर आती हैं पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में, वो मारंग बलोच हैं, वो मंजूर पश्तीन हैं, वो यंगस्टर्स हैं जो कि अपने लोगों के लिए आगे एक पॉलिटिकल मूवमेंट लेके और इतनी ताकतवर मिलिट्री और स्टेट को ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे बात करो, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हमसे बात करो हमारे, और लोग उनके पीछे चलते हैं। आपकी रियासत ने 2024 के इलेक्शन टोटल सत्यानाश कर दिया, मतलब कि आप कंपेयर कर लेना, इंडिया बहुत जुल्म करता है कश्मीर में सारा कुछ, लेकिन उन्होंने कश्मीर में इलेक्शन तो फेयर करवा दिए ना, जिसकी वजह से पहली दफा हिस्ट्री में 58% जो थे अपना वोटर टर्नआउट थी इंडियन कश्मीर में। हमारे यहाँ एक तो टर्नआउट का पता ही नहीं है, लेकिन आपने क्या किया बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में मसला चल रहा है ना, बलूचिस्तान में आपने जो नेशनलिस्ट पार्टीज थी उनको हटा के आपने वहां माफिया लीडर्स को खुद हैंड पिक करके ले आए, आपने मुल्क के बाकी हिस्से में भी वो ही किया। सो मसला ये कि उस हालात में, उन हालात में एक यंग लड़की है, मारंग बलोच है, खड़ी होती है और आवाज बुलंद करती है, वो कोई मुल्क से बाहर नहीं जा रही, वो आवाज अपनी बुलंद करती है और लोग उसके पीछे चलते हैं। मेरे लिए अगर कोई उम्मीद की किरण है तो ये यंगस्टर्स हैं, मारंग बलोच है, मंजूर पश्तीन है, और ये कह रहे हैं हमसे बात करो, हम कोई मारने मराने की बात नहीं कर रहे। दूसरा मेरे ख्याल में जी जो चीज है वो ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एक मतलब ये कि आप चाहे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हो या ना हो, लेकिन ये है कि एक कम अज कम गुफ्तगू को वो एक उन्होंने एक ऐसे اس پہ لے گئے ہیں جہاں لوگ سوال کم از کم اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ کس طرح کا طریقہ حکومت ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں میرے خیال میں چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں مزید, جس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کو سوچنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ آپ انسٹیٹیوشن بلڈنگ تو کریں نا. مطلب یہ کہ اگر کل کو میں یہ کہوں, فرض کریں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ فلانے جنرل بدل دو, یا فلانا جنرل آ جائے گا اور وہ عمران خان کو لے آئے گا اس پرائم منسٹر اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے, تو یوں نہیں ہوگا. کوئی بھی پارٹی مت سوچے, میرے خیال میں ایک میکنزم, ایک تھنکنگ, ایک سوچ جو ہے وہ کریٹ ہونی چاہیے, اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ فوج کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی. ایک یا دو یا دس بندوں کو ہٹا کے نہیں, انسٹیٹیوشن میں چینجز, ڈیفنس مینجمنٹ میں چینجز, پارلیمنٹ کی کیپیسٹی کی گروتھ, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنی پڑیں گی, اور تمام پارٹیوں کو مل کے کرنی پڑیں گی. ایک پارٹی الگ کہے کہ نہیں یہ سارے تو چور ہیں, ان سے تو ہم بات نہیں کرتے, یہ انفارچونیٹلی سب پارٹیوں کو مل کے اس پہ سوچنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی. اور جہاں جب تک جہاں آتا ہے جی معاملہ بات کرنے کا, پیشنس کا, ٹالرنس کا, تو میرے خیال میں وہاں آ کے تھوڑی سی امید کمزور ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں پتہ نہیں وہ کب وقت آئے گا کہ کیپیسٹی بلڈ ہو. آج کے دن میں تو بالکل وہ نہیں ہے, بلکہ کیا جا رہا ہے, مطلب یہ کہ ایتھنسٹیز کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے, پشتونوں کے خلاف اتنی باتیں ہیں, سرائکیوں کو کہ پنجابی نیشنلسٹ اینڈ شوونسٹ جو ہیں وہ بھی آ گئے میدان میں اتر کے آگ لگانے کے لیے. سو ٹالرنس اینڈ ایکسیپٹیبلٹی ایک دوسرے کی اگر سوسائٹی میں یہ قائم نہیں ہوگی, اور اگر اس لیول پہ آپ تیلی لگائیں گے, تو پھر امید کا لفظ جو ہے نا وہ تو بہت ہی, اس کی امید نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. میں ایک آخری چیز جو آپ سے کرنا چاہتی ہوں, دنیا اپنے جو برین ڈرین سے ڈرتی ہے, آپ بہترین ریپرزنٹیشن ہیں پاکستان کی. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ڈاکٹر عبدالسلام واحد پاکستانی جس نے نوبل پرائز بھی لیا, مگر ہم ڈس اون کر دیتے ہیں. حالانکہ ایک کنٹری ایک گھر کی طرح ہوتا ہے, میرا چھوٹا سا گھر ایک کنٹری ہے, وہی بجٹنگ تمام چیزیں وہی چلتی ہیں, مگر ہم برداشت کے ساتھ چلتے ہیں. ہم ڈس اون نہیں کر سکتے, کہیں ہم ماں باپ بچوں کو آنکھ نہیں کر سکتے, بچے ماں باپ کو آنکھ نہیں کر سکتے. آپ اتنی مطلب بریلینٹ خاتون ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے کہیں غلطی کی نشاندہی کی ہے تو they could have listened to it very closely, اور وہ ہم اندر چینجز بھی لے کے آ سکتے ہیں. you could be a part of any think tank. تو جب ہم ایسی شخصیات کو جو جن کے پاس نالج بھی ہے, جو بہترین ہمیں حل بھی دے سکتے ہیں, وہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, کیوں ہم ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لا کے اسٹریٹجیز نہیں بنا سکتے؟
دیکھیں جی, اپنی بات کروں گی, میں چھوڑ کے نہیں گئی تھی, مجھ سے چھڑوایا گیا ہے.
کہا کہ اگر میرا ملک والوں کو بھی چاہیے تھا کہ ایک اگر انٹیلیجنٹ پرسنالٹی ہے, they should not have lost her.
Can I explain? Let me finish. میں صرف کہہ رہی ہوں کہ کچھ کیسز میں لوگ جاتے بھی ہیں جی, لوگ اس لیے بھی جاتے ہیں کیونکہ وہاں بات کرنے کی, وہاں سسٹین کرنے کی کے مسائل بہت پڑتے ہیں. سو میں صرف ڈیفرینشیٹ کر رہی تھی کہ پرسنل کیس میرا یوں ہے, بٹ لوگ خود بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ حالات مشکل ہو جاتے ہیں. ٹالرنس نہیں ہے نا جی, سسٹم میں ٹالرنس نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ میں کبھی بھی میں نے نہ یہ سوچا ہے اور نہ یہ کہا ہے کہ جی میں اکلے کل ہوں, میری تمام باتیں مانو. میں کہتی ہوں کہ آئیں بیٹھے, لیٹس ہیو اے ڈائیلاگ, बात करते हैं, कुछ मैं आपसे सीखूं, कुछ आप मुझसे सीखें, कुछ किसी और से हम सीखें, मिलके एक चीज को किया जाए। देखें मसलन 90s में मनमोहन सिंह जो कि पहले इंडिया के प्लानिंग कमीशन में थे, फिर फाइनेंस में थे, नरसिम्हा राव उनके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और उन्होंने एक टीम 20-25 लोगों की, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी थे, कुछ और लोग भी थे, इकट्ठे किए और उन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग जो थी उसको रीडिजाइन किया। देखिए जो इकोनॉमिक अपलिफ्ट हुई है, इंडिया ने तरक्की करनी शुरू की है, वो मेन काम 90s में हुआ है। हमारे यहाँ हर कोई दूसरे को काटता है, जो आ जाता है वो कहता है कि अच्छा कोई और ना आए मेरी जगह। सो वो एक लतीफा हुआ है ना, आपने भी सुना होगा कि कयामत आई तो सब मुल्कों के जो थे ना वो मटके से थे, और उसके ऊपर हर मटके के ऊपर एक 2-3 फरिश्ते खड़े होते थे, कोई निकलने की कोशिश करता था आग से तो डंडे से कर देते थे, तो एक मटके पे कोई भी नहीं था। तो किसी ने पूछा कि भी ये मटका किसका है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान का है, क्योंकि जो बाहर निकलने की कोशिश करता है पीछे से कोई उसकी टांग खींच लेता है। तो हमारे ये मसाइल हैं कि हम सिर्फ एक को हम कहें जी इस इदारे का कसूर है, इस इदारे का कसूर है, हमारी बहसियत कौम, हमारी मिजाज ऐसा बन गया है। हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो है वो शदीद है, हमारे एकेडमिक खत्म कर दिए गए हैं, हमारे जो मीडिया है उनको क्योंकि बोलने की सजा मिलती है, इसलिए हमके इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी हमारे यहाँ है ही नहीं, बहुत कम हो गई। तो ऐसे उसमें कौन डायलॉग करेगा।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, एंड आई लुक फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह आपसे, मुझे एहसास है कि आप बहुत मसरूफ भी हैं, मगर आप उन लोगों में से वन ऑफ दोज जो मेरे मुल्क का सरमाया है, एंड ऑफ कोर्स आपके हम वी कैन ऑल, और मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ बेशुमार और लोग आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और फिर हम अपनी शऊर को इस्तेमाल करते हुए हम आंखें बंद करके इस 21वीं सदी में अंधाधुंध पैरवी मत करें, मगर बट वी मस्ट नॉट बी पोलराइज्ड एज वेल। अगर आपको कोई ये लफ्ज कहता है, सॉरी डॉक्टर साहब मैं ये आपका भी पैगाम लूंगी, मगर अगर आपको कोई ये कहता है नहीं तुमको एक रास्ता चूज करना है या दूसरा रास्ता चूज करना है, देयर इज ऑलवेज अ सेंटर। आप मुल्क के लिए सोचिए और मिल के सोचिए। आप अपना डॉक्टर साहब पैगाम दे दीजिएगा, और वंस अगेन आई थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर टाइम एंड इंफॉर्मेशन।
बस वेरी काइंड कि आपने बुलाया, मेरे ख्याल में सोचते रहे हम, और यह है कि पेशेंस एंड टॉलरेंस और एक दूसरे से बात करने की और एक दूसरे की बात सुनने की अगर हमें एक आर्ट आ जाए, और हम चीजों को बजाय ये कि वहम करें या हम बहुत सारी आइडियोलॉजीज को और आइडियोलॉजीज को लाके फिरकावारियत, नस्ल परस्ती और इस किस्म की बहुत सारी जो आइडियोलॉजीज हैं उनको लेके हम एक दूसरे को जज करना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में इस अंधेरे में जहां हम फंसे हैं वहां निकलना मुश्किल होगा। थोड़ी सी रोशनी अपने दिमागों में लाने की बहुत जरूरत है, वो उस रोशनी के लिए इल्म हासिल करना बड़ा जरूरी है। ये सिर्फ YouTube से या वीलॉग से या सोशल मीडिया से काम नहीं चलेगा।
बहुत प्यारी आपने पैगाम दिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, और मेरी आप तमाम से यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि अगर हम इकट्ठे हैं और हम सोच के, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डायलॉग के साथ, अंडरस्टैंड करने के बाद, तालीम के साथ things can be different. बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। मेरे से खुदा हाफिज।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
जबरदस्त उम्रा पैकेज के लिए एक ही नाम, अल हबीब ट्रैवल। साल 2024 के उम्रा पैकेजेस, वो भी खुसूसी डिस्काउंट प्राइस और आला मेयार की सहूलियत के साथ। उम्रा कीजिए फरवरी 15 से फरवरी 25 तक। 5-star पैकेज, वीजा इंक्लूडेड, डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम टोरंटो टू जद्दा मदीना वाया सऊदी एयरलाइन, ऑल होटल्स विद ब्रेकफास्ट, स्विस अल मकाम होटल इन मक्का, अल अकीक होटल इन मदीना, फुल ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन, ज़ियारत मक्का इन मदीना, अल हबीब ट्रेवल, ओपन 7 days a week. फॉर मोर डिटेल्स कॉल 416-710-1549, 416-710-1549, अल हबीब ट्रेवल।
चलिए जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू, किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए। काटू कैसे राता तू सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के राता लंदिया लंदिया संगे आंगे आंगे आरे कटे तेरे संगे आंगे आरे।
जमीन पर
कर कितना तुझे क्या पता कि याद देती है दर्द कितना
चाहने लगा जिसके लिए तू हाथ मेरा एक पल में छोड़ के जाने लगा कौन है वो दुनिया में जो तुझे मुझसे बढ़कर चाहने लगा जिसके लिए तू हाथ मेरा एक पल में छोड़ के जाने लगा तू सोच समझ कर चाहो कर सकता है क्या मेरी तरह वो तुझ पर हंस के मर सकता है क्या वो जो भी कहता है वो सच में कर सकता है क्या मेरी तरह वो तुझ पर हंस के मर सकता है हंस के मर सकता है बहुत
फर्क होता है यूं साथ मुस्कुराने में, हाथ थामने में और जिंदगी बिताने में। जीने मरने की बातें करके भूल जाते हैं, क्या किसी का जाए झूठे ख्वाब सा दिखाने में। तुम गलियों में अपनी बुलाओ जरा मेरे, जितने काटे दिखाओ जरा, बिना किए ज्ञान से वो भी गुजर सकता है। क्या वो जो भी कहता है वो सच में कर सकता है, क्या मेरी तरह वो तुझ पर हंस के मर सकता है। क्या वो जो भी कहता है वो सच में कर सकता है, क्या मेरी तरह वो तुझ पर हंस के मर सकता है।